ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने तथा 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। संविधान दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज बताया, जिसके माध्यम से देश सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले किसी भी आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब देने के भारत के संकल्प पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और भारत का संविधान आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 भी जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु के 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल राजभवन उदगमंडलम में आदिवासी महिला एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और नीलगिरी जिले के आदिवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों से बातचीत करेंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार का संकल्प भारत को 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इस अभियान में सहकारिता मंत्रालय अहम भूमिका निभाएगा। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव की कल घोषणा की। इनमें से 3 सीटें आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से 1-1 सीट है। उपचुनाव के लिए मतदान और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कर रखा है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनंत पर्यटन संभावनाओं को उजागर करना है। यह आयोजन पर्यटन व्यवसाय में लगे लोगों और उद्यमियों को साथ लाने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशन धारकों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र व्यवस्था ने अपने तीसरे चरण में रिकॉर्ड 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों का जीवन आसान बनाएगा। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए मनरेगा के तहत अधिक धनराशि की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के वेतन के लिए 2081 करोड़ रुपए जारी करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 59 वाटरशेड परियोजनाओं का स्वागत किया। इसराइल की सरकार ने लेबनान में हिजबुल्ला के साथ संघर्ष विराम समझौते का अनुमोदन कर दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कार्यालय में कल रात ये घोषणा की। अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में तय समझौते से युद्ध रुकने की संभावना है। इस युद्ध के दौरान लेबनान में लगभग 3,800 लोग मारे जा चुके हैं और 16,000 से अधिक घायल हुए हैं। इसराइली मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर समझौता लागू करने की बात कही। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के चक्रवात में परिवर्तित होने की संभावना है। इस कारण पुडुचेरी में 29 नवंबर तक तेज बारिश का अनुमान है। पुडुचेरी के जिला कलेक्टर कुलोथुंगन ने स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही आपात स्थितियों से निपटने के लिए अराकोनम से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को बुलाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।